તારીખ 17/6/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 866 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
450. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 866 પૃષ્ઠ સંખ્યા 643 હિન્દી મેં 643 હૈ. દ્રવ્યાનુયોગ કે વિષય પર જો વિચાર યહાં પ્રસ્તુત કિયે હૈ તો મુમુક્ષુ કે લિયે બહુત પ્રયોજનભૂત હૈ. ક્યા કહેતે હૈ, દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર ઔર સૂક્ષ્મ હૈ, નિર્ગ્રંથ પ્રવચન કા રહસ્ય હૈ, શુક્લ ધ્યાન કા અનન્ય કારણ હૈ. એ પહેલા વચન હૈ. તીન દિન પહેલે એ પંક્તિ ચલી ગઈ થી, ફિર ચલે. દ્રવ્યાનુયોગ મેને ક્યા, ચાર અનુયોગ મેં એક અનુયોગ હૈ જો પદાર્થ કે વિજ્ઞાન કા નિરૂપણ કરતા હૈ. જીવ અજીવ આદિ જો પદાર્થ હૈ, વો પદાર્થ મેં વસ્તુ વ્યવસ્થા ક્યા હૈ, इसके गुणधर्म की व्यवस्था क्या है, इसके परिणमन की व्यवस्था या विज्ञान क्या है, गुणों का विज्ञान क्या है, धर्मों का विज्ञान क्या है, परिणमन में विकारी परिणमन और अविकारी परिणमन का विज्ञान क्या है, और इस विज्ञान के अनुसार इनके जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, इस सिद्धांतिक विषय को यहाँ द्रव्यानुयोग कहने में आया है. द्रव्यानुयोग माने सिद्धांत बोध. क्या द्रव्यानुयोग माने सिद्धांत बोध को द्रव्यानुयोग कहते हैं. और वो द्रव्यानुयोग बहुत गंभीर है. मैंने उसमें इतना भरा है, इतना पड़ा है, अनंत भाव पी करके एक द्रव्य बैठा है. भले परमाणु का क्षेत्र बहुत सूक्ष्म है और जीव का निगोद का जीव का क्षेत्र बहुत सूक्ष्म है, बाकी संसारी प्राणियों का स्वदेह प्रमाण क्षेत्र है, क्षेत्र छोटा मोटा है इससे कोई संबंध नहीं है, किंतु प्रत्येक द्रव्य अनंत भाव पी करके बैठा है. अनंत अनंत भाव भरे हैं इसमें, फिर भी बाहर में एक द्रव्य है, क्षेत्र से बहुत छोटा दिखाई देता है. ये वस्तु की गंभीरता है, ये वस्तु की गंभीरता है कि इसमें कितनी गुण संपत्ति पड़ी है, वो बाहर में दिखाई देती नहीं है. सर्वज्ञ वितराग केवली होते हैं तो उसकी कुछ संपत्ति बाहर में दिखाई देती है, फिर भी वो पूरी मात्रा में दिखाई नहीं देती. जो 34 अतिशय है भगवान के, तीर्थंकर देव के, ये तो पौद्गलिक विभूति है, ये कोई तीर्थंकर देव की विभूति नहीं है. लेकिन भूतकाल में जो पुण्यवन का अनुबंध किया था उसका उदय आया है. समोसरण आदि कल्प वृक्ष आदि जो भी है, अंतर की आत्मा की विभूति है, उसमें परम शांति प्रकट हुई है. वो परम शांति वितराग जिन मुद्रा में दिखाई देती है, वो झलकती है, फिर भी अंदर में उतनी जितनी भरी है उतनी तो बाहर में दिखाई देती नहीं है. द्रव्य स्वयं गंभीर है. द्रव्य गंभीर है तो द्रव्य का प्रतिपादन करने वाला द्रव्यानुयोग भी परम गंभीर है, उत्कृष्ट गंभीर है. बहुत बहुत गंभीरता इसमें भरी है। उस द्रव्यानुयोग में अध्यात्म का सीधा अनुसंधान है। वैसे तो चारे अनुयोग में अध्यात्म है, वो बात हमने चली थी कि चारों अनुयोग अध्यात्म और वितरागता का प्रतिपादन तो करता ही है, लेकिन द्रव्यानुयोग तो सीधा करता है, बाकी के तीन अनुयोग इनडायरेक्ट करता है, परंपरा से करता है, ये सीधा प्रत्यक्ष कर देता है। तो द्रव्यानुयोग के जो आगम है, परमागम है, उसके अध्ययन में अध्यात्म का बोध भी सीधा ही होता है। और ये अध्यात्म का जो पहलू है तो उपदेश बोध के विभाग में जाता है, द्रव्यानुयोग सिद्धांत के विभाग में जाता है, सिद्धांत बोध में आता है, और अध्यात्म उपदेश के प्रकरण में आता है। उपदेश बोध, सिद्धांत बोध, ऐसे बोध का दो विभाग किया, तो उपदेश बोध है वो द्रव्यानुयोग अध्यात्म का विषय है। उसमें क्या है, ये भी कृपालु देव का वचन है, उपदेश बोध परिणमत हुए बिना मुमुक्षु जीव को, किसकी बात चल रही है, मुमुक्षु जीव को सिद्धांत बोध परिणमित नहीं होता। तो वहां उपदेश बोध का परिणमन का स्तर क्या, मुमुक्षु की भूमिका का स्तर कौन सा, उतना विचारणीय है, तो विचार करने योग्य है, वो उतनी अपेक्षित मर्यादित बात है। तो वहां जो सिद्धांत उपदेश बोध का परिणमन है वो दर्शन मोह का अनुभाग कटे बिना, दर्शन मोह मंद हुए बिना, उसका रस टूटे बिना सिद्धांत बोध ग्रहण करने की निर्मलता नहीं होती। क्षोभम तगड़ा हुए तो धारणा हो जाए सिद्धांत बोध की, लेकिन सिद्धांत बोध परिणमेगा नहीं। यह तो परिणमन की बात चली है, सिद्धांत बोध कब परिणमता है, सिद्धांत बोध जब परिणमता है कि दर्शन मोह की मंदता हुए तो, और ये उपदेश बोध से होती है। वैसे तो एक दूसरे का पूरक भी बनता है, फिर आगे जाके एक दूसरे का पूरक भी बनता है, क्यों कि सिद्धांत अनुसार परिणमन में स्थिर रहना ये उपदेश बोध बिना संभव नहीं है, और सिद्धांत बोध का परिणमन होना ये उपदेश बोध बिना संभव नहीं है। उपदेश मिल गया, उदासीन रहना, चलो पर द्रव्यों से, भोग उपभोग से, उदय भावों में उदासीन रहना, टिकेगा किस आधार से, सिद्धांत द्रव्य के वस्तु के स्वरूप अनुसार जो सिद्धांत है द्रव्यानुयोग के, उसको ग्रहण किए बिना टिक पाएगा नहीं। इसलिए तो उपदेश बोध अन्य मतों में, अन्य संप्रदायों में होने पर भी वहाँ कोई संयम आदि में टिक करके, स्थिर हो करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं है। यही कारण है इसका कि किस आधार से टिकेंगे, वहाँ तो मनोबल होगा, तो मनोबल तो एक राग का बल है, तो राग स्वयं लंगड़ा है, ताकत बिना का है, तो खुद ही टिकने वाला नहीं है, अस्थिर है, तो मनोबल के आधार पर कितना भी दृढ़ता हो उसमें कोई जीव टिक सकता नहीं है। एक ध्रुव द्रव्य जो द्रव्यानुयोग का विषय है और अध्यात्म का भी साथ साथ विषय है, उस नित्य स्थिर है और अनंत सामर्थ्य लेकर के बैठा है, कितना अनंत अनंत बेहद सामर्थ्य लेकर के बैठा है, उसके अवलंबन से, उसके आधार से जो दृढ़ता परिणमन में होती है उसमें वो स्थिर हो सकता है, उसमें लीन हो सकता है, उसमें टिक सकता है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 506 में है, विस्तार वाली बात है, थोड़ा मुद्दा मुद्दे की बात लेना हो तो ले ले। उस दिन उस सिद्धांत बोध वाली बात नहीं, देशभोध सिद्धांत बोध वाली बात नहीं चली थी। और हिंदी में 413 है। श्री तीर्थंकर आदि महात्माओं ने ऐसा कहा है कि विपर्यास दूर होकर जिसको देहादि में हुई आत्मबुद्धि और आत्मभाव में हुई देह बुद्धि नष्ट हो गई है, अर्थात आत्मा आत्म परिणामी हो गया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को भी जब तक प्रारब्ध व्यवसाय है तब तक जागृति में रहना योग्य है। अच्छा, वो पैराग्राफ छोड़ करके दूसरे पैराग्राफ से ले में, क्योंकि बहुत विस्तार वाला पत्र है ना। ज्ञानी पुरुषों ने दो प्रकार से बोध दिया है, एक तो सिद्धांत बोध और दूसरा उस सिद्धांत बोध के होने में कारणभूत ऐसा उपदेश बोध। उपदेश बोध क्या बोला, कारण बोले। सिद्धांत बोध होने में कारण रूप ऐसे सिद्धांत बोध। यदि उपदेश बोध जीव के अंतःकरण में स्थित हुआ न हो, क्या उपदेश बोध अंतःकरण में, क्या किधर अंतःकरण में स्थिर हुआ न हो, स्थितिमान हुआ न हो, तो उसे सिद्धांत बोध का मात्र श्रवण भले ही हो, धारणा भले ही हो, श्रवण हो धारणा भले ही हो, परंतु उसका परिणमन नहीं हो सकता और वो प्रत्यक्ष देखने में आता है। सिद्धांत बोध अर्थात पदार्थ का जो सिद्ध हुआ स्वरूप, सिद्धांत बोध माने क्या, पदार्थ का सिद्ध हुआ जो स्वरूप, अनुभव से सिद्ध हुआ, केवल ज्ञान से जान करके सिद्ध हुआ, ऐसा जो स्वरूप ज्ञानी पुरुषों ने निष्कर्ष निकाल कर मैंने सभी विपर्यास को छोड़ करके जिस प्रकार से अंत में पदार्थ को जाना है, आखिर में जाना है, उसे जिस प्रकार से वाणी द्वारा कहा जा सके उस प्रकार बताया है, ऐसा जो बोध है वो सिद्धांत बोध है और वही द्रव्यानुयोग है, वही द्रव्यानुयोग है। परंतु पदार्थ का निर्णय करने में जीव को अंतराय रूप उसकी अनादि विपर्यास भाव को प्राप्त हुई बुद्धि है, विपरीत मति अनादि से विपरीत संस्कारों से संस्कारित हुई जो विपरीत मति है, यही अंतराय है। बाहर का कोई अंतराय नहीं है, ज्ञान प्राप्ति में बाहर का कोई अंतराय नहीं है। हमको एकांत नहीं मिलता, हमको समय नहीं मिलता, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ये सब गड़बड़ बाहर वाली उसमें अंदर में नहीं है, अपनी विपरीत मति है, विपरीत संस्कार है, वही अंतराय है सच्चा। बुद्धि है जो व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से, इसका मतलब क्या, व्यक्त रूप से मैं किसी को ख्याल में आता है कि मेरा विपर्यास ऐसा चलता है, पकड़ में आता है, जिसका थोड़ा भी अपना ऊपर लक्ष्य जाता है, ध्यान जाता है, अवलोकन होता है तो पता, या विचार करता है तो भी पता चलता है, स्वयं का विचार करने से भी पता चलता है, अवलोकन से तो बहुत पता चलता है, और किसी को पता नहीं चलता है, इतना सूक्ष्म विपर्यास हो कि अपने आप को पता नहीं चले, उनको ऐसा लगे कि मुझे तो समय सार आदि सभी शास्त्र समझ में आता है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो क्या कारण होगा कि अव्यक्त रूप से वो विपर्यास चल रहा है तो उसकी पकड़ में नहीं आता है। ऐसे अवलोकन करने वाले को तो अव्यक्त अव्यक्त नहीं रह सकता, वैचारिक भूमिका जहाँ तक है, और अवलोकन की भूमिका में जो मुमुक्षु नहीं आया है उसको बात अव्यक्त रूप रह सकती है, लेकिन जिसको स्वरूप स्वयं का अवलोकन है, पर वो अवलोकन भी अवलोकन की प्रैक्टिस ज्यादा होने से बारीक सूक्ष्म अवलोकन होता जाता है और होता है, उनको विपर्यास अव्यक्त नहीं रह सकता, उनका विपर्यास उसकी पकड़ में आ ही जाएगा, ये बात जरूर है। क्यों? कि वो विपर्यास है वो भी स्थूल है, आखिर में वो विभाव है और विभाव है वो स्थूल है और स्वभाव तो सूक्ष्म है। तो अवलोकन करने वाला तो स्वभाव जाति को पहचानेगा, तो विभाव जाति को नहीं पहचानेगा वो बात रहेगी नहीं। वो देखिए, और अगर आगे बात लेते हैं इसमें प्रयोग पद्धति के, तो जो मुमुक्षु जीव भेद ज्ञान का प्रयोगात्मक प्रयास करता हो भीतर में, तो वो तो वर्तमान में अपने ज्ञान को मात्र ज्ञान रूप से, एकिला ज्ञान रूप से भिन्न करने का प्रयास करता है। जो रागादी भाव है, सूक्ष्म विकल्प है, उससे भी भिन्न करने का इसका प्रयास चलता है। तो उसमें उनको कोई विपर्यास अव्यक्त रह जाए ऐसा बन पाएगा नहीं, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जो उस भूमिका में नहीं आए और विचार की भूमिका में बहुत विचार करते हो, थोड़ा नहीं करते हो, बहुत विचार करते हो, बहुत विचार करने पर भी वो विचार स्थूल है, अवलोकन सूक्ष्म है, विचार स्थूल है, वो दोनों ज्ञान है लेकिन एक स्थूल ज्ञान है एक सूक्ष्म ज्ञान है, वो स्थूल ज्ञान में पकड़ में नहीं आता उसको, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई अव्यक्त विपर्यास चल रहा है, इसलिए हमारा पुरुषार्थ उड़ता नहीं है। पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं मानना वहां, पुरुषार्थ का विपर्यास है, विपर्यास मानना, कमजोरी मानना नहीं, कमजोरी मानना ये और एक विपर्यास हो गया वो स्वयं विपर्यास है ऐसा नहीं मानना, ये गड़बड़ है। ठीक है, जो व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से विपर्यास भाव से पदार्थ स्वरूप का निर्धार कर लेती है, क्या विपरीत मति भी जाने अनजाने में, यहाँ पर जाने अनजाने में पदार्थ के स्वरूप का निर्धार कर लेती है कि आत्मा ऐसा है, द्रव्य क्षेत्र से, काल से, भाव से, द्रव से, गुण से, पर्याय से, उत्पाद से, व्यय से, ध्रुव से, अनेक प्रकार के गुण गुणी भेद से पदार्थ का विपरीत निर्धार कर लेती है, विपरीत बुद्धि है, इसलिए उस विपर्यास बुद्धि का बल घटने के लिए, टूटने के लिए, यथावत वस्तु स्वरूप के ज्ञान में प्रवेश होने के लिए, क्या यथावत वस्तु स्वरूप के ज्ञान में प्रवेश होने के लिए जीव को वैराग्य रूप साधन कहे हैं, क्या साधन कहे हैं, वैराग्य और उपशम, तीव्र रस से उदय में परिणमन करना नहीं, ये वैराग्य उपशम है, ये मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य है। पर उपशम में कषाय रस मंद हो जाए, कषाय नहीं, कषाय रस मंद हो जाए, ये उपशम है। और ऐसे जो जो साधन जीव को संसार भय दृढ़ कराते हैं, उन उन साधनों संबंधी जो उपदेश कहा हो वह उपदेश बोध है। संसार के भय को, भव भ्रमण का भय होना चाहिए। ऐसे आत्मार्थी ज्ञानी निर्भय होते हैं, उसको निर्भय बोला जाता है, लेकिन संसार भय तो उसको भी है, संसार में कोई भटकना चाहते नहीं है, भव भ्रमण का भय तो होना ही चाहिए, दूसरा भय नहीं हो लेकिन भव भ्रमण का भय तो होना ही चाहिए। अब इस पर चर्चा की है, लेना है इस पर और चर्चा की, इसमें सिद्धांत बोध और उपदेश बोध की मुख्यता, मुख्यता में क्या करना, कैसे करना, थोड़ा चर्चा करना हो तो कर ले, द्रव्यान युग का विषय चलता है ना। यहाँ ऐसा भेद उत्पन्न होता है कि उपदेश बोध की अपेक्षा सिद्धांत बोध की मुख्यता प्रतीत होती है, क्योंकि उपदेश बोध भी उसी के लिए है, सिद्धांत समझाने के लिए है, और उपदेश बोध तो अन्य में भी है, जबकि सिद्धांत बोध का मूल्य ज्यादा दिखता है यहाँ तो। तो फिर यदि सिद्धांत बोध का ही पहले से अवगाहन किया हो तो वो जीव को पहले से ही उन्नति का हेतु है, इसको पहले रखो ना, उसको बाद में क्यों रखते हो, पहले उपदेश बोध को क्यों परिणमन करना। यदि ऐसा विचार उत्पन्न हो तो यह विपरीत है। क्या ऐसा अभिप्राय हो, विचार हो तो यह विपरीत है। देखो ये क्रम लिया, सिद्धांत बोध और उपदेश बोध में क्रम है, क्योंकि सिद्धांत बोध का जन्म उपदेश बोध से होता है, इसके पहले होता नहीं। सिद्धांत बोध का जन्म ही नहीं होगा, धारणा हो जाएगी इससे कोई मिलने वाला नहीं है। जिसे वैराग्य उपशम संबंधी उपदेश बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धि की विपर्यास्ता रहा करती है। जिसको वैराग्य उपशम संबंधी उपदेश बोध नहीं हुआ हो, उसे बुद्धि की विपर्यास, अनादि की जो विपर्यास है वो रहा करेगी। दर्शन मोह है ना, तो उसको बुद्धि को भ्रमित करेगी, ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे अच्छी नहीं है। और जब तक बुद्धि की विपर्यास्ता हो, तब तक सिद्धांत का विचार करना भी विपर्यास रूप से होना ही संभव है। तो विपरीत विचार करेगा, जैसे आत्मा परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो कि हम दान नहीं दे सकते, चलो पैसे तो बच गए, और दूसरा जीव की हिंसा हो, हम क्या करें, इसका आयु होगा वैसा होगा, हमारी जरूरत है, इसका आयु होगा तो बचेगा, इसका आयु पूरा होगा तो मर जाएगा, हम क्या करने वाला, हम तो कुछ कर सकते हैं नहीं है, तो वो उल्टा लेगा हर बात में, उल्टा लेगा। पर पदार्थ पर अपनत्व रखेगा और बात करेगी भिन्न, करेगा भिन्नता के, अपनत्व रखेगा, कर्तृत्व रखेगा और बात करेगा क्रमबद्ध की, ये सब गड़बड़ विपरीत परिणमन का हो जाएगा। क्योंकि चक्षु में जितना धुंधलापन रहता है वह उतना ही पदार्थ को धुंधला देखता है, और यदि उसका पटल अत्यंत बलवान हो, चक्षुओं का पटल, तो उसे समूचा पदार्थ दिखाई नहीं देता। तथा जिसका चक्षु यथावत संपूर्ण तेजस्वी हो, वह पदार्थ को भी यथा योग्य देखता है। इस प्रकार जिस जीव की गाढ़ विपर्यास बुद्धि हो, उसे तो किसी भी तरह सिद्धांत बोध विचार में नहीं आ सकता। जिसकी विपर्यास बुद्धि मंद हुई है, उसे तद अनुसार उसी अनुपात में सिद्धांत का अवगाहन यथार्थ रूप में होता है, और जिसे उस विपर्यास बुद्धि का विशेष रूप से क्षीण किया है, उस जीव को विशेष रूप से सिद्धांत का अवगाहन होता है। और विपर्यास बुद्धि का उधर परिभाषा नीचे किया है कि ग्रह कुटुंब परिग्रह आदि भाव में जो अहंता ममता है, ये मेरा कुटुंब है, ये परिग्रह मेरा है, उसका अपनेपना का जो भाव है, उसमें जितनी पकड़ है, और उसकी प्राप्ति अप्राप्ति के प्रसंग में जो राग द्वेष और कषाय होती है अपनत्व के कारण से, वही विपर्यास बुद्धि है। क्या कहा, पर में स्वपना किया, वही विपर्यास बुद्धि है सबसे बड़ी। बस उतनी भूल छूट जाए ना, तो दो द्रव्य की भिन्नता, ये द्रव्यानुयोग का जो मूलभूत सिद्धांत है, उसकी गंभीरता समझ में आएगी। तो लिया था आपने 3 दिन पहले, जड़ चैतन्य भिन्न है दो द्रव्य, ऐसा जो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत है, आजकल गुरुदेव की कृपा से हमें उसमें कोई हाँ भरने में जोर पड़ता नहीं है, मुश्किली नहीं आती, ताकत नहीं लगानी पड़ती, लेकिन परिणमन करने में बहुत सूक्ष्मता है। सोपशम में धारणा करने में कोई ताकत नहीं पड़ती, वो आसान हो गया है, समो को नहीं है, गुरुदेव की कृपा से मुमुक्षु को उतना हुआ है, लेकिन परिणमन करने में कितनी सूक्ष्मता है, वो भिन्नता का पुरुषार्थ करे तब पता चले कि उसमें सूक्ष्मता भी कितनी है और उसमें गंभीरता भी कितनी है। कितनी भी वेदना हो सातवीं नरक के, और कितना भी तनाव हो, मानसिक टेंशन हो, भिन्नता का अनुभव करते ही, अरे प्रयास करते ही सब गायब हो जाता है। कहाँ चला गया पता लगेगा नहीं, कितना चमत्कारिक विषय है। उसको चैतन्य का चमत्कार कहने में आता है। ये भी विपर्यास है। ठीक है, कोई चिट्ठी आया था, बात किया था, हम लोग गुरुदेव प्रवचन करते हैं तो हाँ जी जी प्रमाण करते हैं, लेकिन परिणमन तो करते नहीं, तो हमारा वो हाँ भरना कहाँ तक उचित है? अब ऐसा हाँ भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ऐसा प्रश्न आया था। आते ना प्रश्न तो बहुत आते हैं, आत्म जागृति के हिसाब से भी कई प्रश्न आते हैं। कोई तो ऐसे मुझे हमको सीधा जवाब मिलना, आत्म जागृति में नहीं लेना है, कोई ऐसे जवाब देना। बात तो सही है, तो सही हाँ नहीं भरी तो वो वास्तविक टाइप में नहीं है। हाँ भरने में अपनी जुम्मेवारी का ख्याल रख करके हाँ भरना है, तो इसकी गंभीरता आएगी। बिना गंभीर अगंभीर वस्तु हो जाएगी। द्रव्यानुयोग गंभीर है और हम उसको अगंभीर बना लेंगे, बात बात में द्रव्यानुयोग की बात कर लेंगे, वो करने लायक नहीं है। उसकी गंभीरता छूट जाती है तो उसका परिणमन होने का अवसर आएगा नहीं, ये नुकसान हो जाएगा।
वातावरण हल्का कर दे,
तो हंसी मजाक तो प्रवचन में होना नहीं चाहिए, ये गंभीर विषय है। एक मरण, पूरे कुटुंब में एक व्यक्ति का एक मरण का प्रसंग भी आ जाए ना, डॉक्टर ने बोला है कि भाई कह नहीं सकते क्या हो जाएगा, बात कंट्रोल में दिखती नहीं है, उतना भी बोले ना तो सब गंभीर हो जाता है। कोई ठट्ठा मस्करी करते हैं वहां घर में, एक आदमी डेथ बेड पर हो, मृत्यु शैया पर हो, तो कोई मजाक करता है क्या?
नहीं,
नहीं करेगा। ये तो अनंत जन्म मरण की समस्या को सुलटा नहीं है, एक मरण की बात नहीं है, अनंत जन्म मरण के, तो उसमें कितनी गंभीरता चाहिए, कितनी गंभीरता चाहिए। इतना गंभीर होकर के इसके प्रयास में हमें लगना है तो ही काम होगा, वरना कोई काम होने वाला नहीं, नहीं है।
भिन्नता की जब बात चलती है, भिन्नता की जब बात चलती है तो सुन सुन के तो इतना अभ्यास हो गया है कि भिन्नता का बात चलते ही ऑटोमेटिक हाँ 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 आ जाता है, मतलब सेकंड थॉट नहीं करना पड़ता, तो ये बिना परिणाम के भी आ जाता है।
आदत के, आदत के कारण,
मतलब ये कैसे दूर हो, ये कैसे दूर हो?
उसका नुकसान समझे तो, उसका नुकसान समझ में नहीं आता है तो आदत चालू रहेगी। जैसे किसी को व्यसन की आदत हो जाती है तो उसका नुकसान जहाँ तक उसको नहीं समझ में आता तो व्यसन छूटता नहीं है। अब तो कहते हैं कि भाई कई प्रकार के जो व्यसन है उसमें कैंसर होता है, नाम पढ़ते ही कई लोगों छोड़ देते हैं, पर किसी को नहीं भी छूटता है, नहीं छूटता इसका कारण कि नुकसान उसको समझ में नहीं आया, सुनने में आया समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट ने तो कानून बनाए तंबाकू टोबैको के लिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजरियस फॉर हेल्थ, नहीं पढ़ते, हल्का बना दिया। तुम लाखों करोड़ों पीते हैं तो हमको क्या होने वाला है, लाखों करोड़ों में कईयों को हजारों को हो गया। जिसको आदत नहीं छूटती वो हल्कापन करेगा, उसकी गंभीरता समझेगा तो छोड़ देगा, उतनी सी बात है। અંદરથી કરવો. કહેવાનો મતલબ શું છે કે સ્વીકાર કરવો તો યથાર્થપણે અંદરથી કરવો. અંદરથી ન આવે ત્યાં સુધી ઉપર ઉપર ની આદત બની જાય તો મુશ્કેલી થાય ને. હા, આ પાડવાની આદત બની જાય, હાજી 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 કરતો રહીએ અને પછી અંદર કઈ અડે નહી. હા, સ્વાનુભૂતિ વખતે આવી જાય, એ પેલા અંદર થી લગ્ન લાગે તો આવી જાય. અંદર યથાર્થ પણ લગ્ન લાગે તો પછી વાંધો નથી, પછી એનો હકાર સાચો છે, એનો હકાર ખોટો નથી. કેમ કે આગળ જતા પરિણમી જવાનો છે, હજી આગળ વધતો વધતો પરિણામ કી ઉન્નત શ્રેણી મેં જિસકો પ્રવેશ કિયા, ઠીક, આત્મ કલ્યાણ કી ઉન્નત શ્રેણી મેં આત્મોન્નતિ કે ક્રમ મેં જિસકા પ્રવેશ હો ગયા, એસી જો પરિણામ શ્રંખલા હૈ તો હા ભરતા હૈ તો વો સહી ભરતા હૈ. ભલે સમ્યક દર્શન ઉસકો અભી નહીં હુઆ, વો આગે હોને વાલા હો તો વહાં ભરતા હૈ વો સહી ભરતા હૈ. ઇસ પ્રકાર નહીં હોતા હૈ, બિલકુલ રોગ સંજ્ઞા મેં આ ભરતા હૈ, ઉસકો આદત હૈ, ઉસકો તો નુકસાન હોને વાલા હૈ. એક બાર હાથો પાડ, એસા ગુરુદેવ કહેતે થે, હા પાડને સે તેરી હાલત હો જાયેગી, એસા કહેતે થે. લેકિન વો હા પાડને કા કહાં સે, ઉપર ઉપર સે નહીં. ગુરુદેવ એસા ભી કહેતે થે, ઉપર ઉપર સે હા મત ભરના, વો ભી કહેતે થે, એસા મુંડી નહીં હુલાના, ઉપર ઉપર સે હમેશા સુન લિયા, ચલો ગુરુદેવ કા વ્યાખ્યાન મિલતા હૈ, તો મુફત મેં મિલતા હૈ, ક્યોંકિ પૈસા તો લેતે નહીં થે ગુરુદેવ, કે મિલ ગયા હમકો, હમકો મિલ ગયા, બહુ વ્યાખ્યાન મિલ ગયા, એસા નહીં સુનના, એસે નીચે મુંડી રાખ કરકે હમેશા સુનતે રહેના, એસા નહીં હોના, ભાવ ભાષણ હોના, બહુ કહેતે થે. તો વો અપને ઉપર ઉપર સે હા ભરતે હૈ, ઓર ગુરુદેવ ને ભી હા ભરને કો બોલા થા, ચલો હમને તો ગુરુદેવ કી માન લિયા, જો અપને અનુકૂળ પડી ઉતની માની, બાકી કી માની નહીં. માનના તો પૂરી માનના, અધૂરી માનના નહીં, એસી બાત હૈ. ગુરુદેવ કી બાત પૂરી માનના, બાત કા ટુકડા હો ગયા તો ગુરુદેવ કે સિદ્ધાંત દિયા ઉસકા ભી ટુકડા હો ગયા, એ હો જાયેગા. મેં કહેતા હું ઇસલિયે માનના નહીં, તું અંદર સે તુજે ભી ભાવ ભાષિત હોના ચાહીએ. ઓર જહાં વૈરાગ ઉપશમ ઉદ્ભવ હોતા હૈ વહાં અહંતા મમતા તથા કષાય મંદ પડ જાતે હૈ, અનુક્રમ સે નષ્ટ હોને યોગ્ય હો જાતે હૈ. ગ્રહ કુટુંબાદી ભાવ મેં અનાસક્ત બુદ્ધિ હોના વૈરાગ્ય હૈ, પર ઉસકી પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ કે નિમિત્ત સે ઉત્પન્ન હોને વાલે કષાય ક્લેશ કા મંદ હોના ઉપશમ હૈ, રસમંદ હોના વા લેના, હા ઉસકો ઉપશમ કહેતે હૈ, વો વૈરાગ્ય ઉપશમ કી પરિભાષા કહા. અર્થાત યે દો ગુણ વિપર્યાસ બુદ્ધિ કો પર્યાયાંતર કરકે સદબુદ્ધિ કરતે હૈ ઔર વિપરીત કરતે હૈ, ઔર વહ સદબુદ્ધિ જીવ અજીવવાદી પદાર્થ કી વ્યવસ્થા જિસમે જ્ઞાત હોતી હૈ, એસે સિદ્ધાંત યાને દ્રવ્યાન યુગ કી વિચારણા કરને યોગ્ય હોતી હૈ. ફિર કોઈ ચક્ષુ કા દ્રષ્ટાંત દિયા હૈ, તો ક્યા બાત કહા, યે દ્રવ્યાન યોગ ગંભીર હૈ, પરમ ગંભીર હૈ, તો યથા યોગ્ય મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરકે હસ્તગત કરના યોગ્ય હૈ. સીધા નહીં લેના, આગે વાલી બાત લેના, ઉપદેશ બોધ કો પરિણમન કરકે સિદ્ધાંત બોધ કો હાથ મેં લેના, અગર એસા નહીં કરેંગે તો નુકસાન ભી હોઈ જાયેગા. ये परम गंभीर है और सूक्ष्म है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और द्रव्य स्वभाव को अपने द्रव्य स्वभाव को अंतर्मुख होकर के विषय करना ये भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है. अर्थात 12 अंग में अंत तत्व स्वरूप, ऐसा जो अपना मूल स्वरूप असल स्वरूप उसको अंतर्मुख होकर के विषय करना कि मैं ऐसा हूँ, वो कैसे आएगा? अंतर्मुख हुए बिना आता नहीं, अंतर तत्व है, ऐसा होना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, 12 अंग में वो सूक्ष्म है, विधि का विषय सूक्ष्माति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। देखो ना, एक पर्याय में ज्ञान की एक पर्याय है, लक्षण बोलते हैं ना, ज्ञान का, ज्ञान को स्वभाव का लक्षण बोला है, किसका? आत्मस्वरूप का लक्षण बोला है, उपयोगो लक्षणम तत्वार सूत्र में दिया। तो उपयोग है वो पर्याय है, उसमें द्रव्य स्वभाव को देखना है पर्यायत्व को गौण करके। क्या उपयोग पर्याय है, क्या सूक्ष्म है, देखो इसमें पर्याय में पर्यायत्व को गौण करके स्वभाव को देखना है तो स्वभाव देखने में आता है, माना उपयोग तो पर्याय है पर स्वभाव तो पर्याय है नहीं, स्वभाव तो न पर्याय है न स्वभाव द्रव्य भी है न स्वभाव गुण भी है, भेद वाला, द्रव्य गुण का पर्याय का भेद, अभेद स्वभाव को से विरुद्ध है, द्रव्य गुण पर्याय का भेद अभेद स्वभाव से विरुद्ध है, जबकि अभेद स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में पाया जाता है। देखो क्या सूक्ष्मता है इसकी, फिर से कि द्रव्य गुण और पर्याय से द्रव्यानुयोग का सिद्धांत अनुसार वस्तु व्यवस्था समझ में आती है, और ये स्थूल विचार ज्ञान में भी लोग समझ सकते हैं, धारणा कर सकते हैं कि द्रव्य इसे कहते हैं, गुण इसे कहते हैं, पर्याय इसे कहते हैं, लेकिन स्वभाव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ये भी द्रव्यानुयोग का विषय है, और ये अध्यात्म का भी वही विषय है, वहां अध्यात्म और द्रव्यानुयोग एक हो जाता है, पर्याय भी द्रव्यानुयोग का विषय है, गुण भी द्रव्यानुयोग का विषय है, फिर स्वभाव भी द्रव्यानुयोग का विषय है, और स्वभाव है वो अध्यात्म तत्व है, और उसके वो देखने वाली पर्याय भी अध्यात्म तत्व है, दोनों अध्यात्म में आता है। तो पर्याय में पर्यायत्व गुण दूर गौण हो जाए, द्रव्य गुण में द्रव्य गुण का भेद दूर हो जाए, गौण हो जाए, तब अनुभव स्वरूप जो स्वभाव है वो तो लक्ष्य में आता है, तो वहां से यथार्थ लक्ष्य बनता है, यही स्वरूप की पहचान यहाँ से होती है। तो स्वभाव के प्रैक्टिकल में कोई दृष्टांत तो उतना काम में नहीं आएगा, दृष्टांत तो पकड़ने में नहीं आएगा उतना, फिर भी अपना विपरीत परिणमन से अविपरीत परिणमन का प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल समझ में आ सकता है, जो उल्टा प्रैक्टिकल चलता है उससे उल्टा प्रैक्टिकल समझ में आ सकता है। जैसे कि 17-18 गाथा में ऐसा कहा समय सार में कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, किसको? कि सभी जीवों को, आबाल गोपाल मैंने सभी जीवों को, कब? के सदा ही। तो अनुभव तो हो ही रहा है, वो चर्चा चली थी 2-3 दिन पहले कि अनुभव तो जीव को हो रहा है, उसको मिथ्या अनुभव क्यों कहते हैं? कि परद्रव्य और परभाव का अनुभव हो सकता नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि मुझे ठंडी गर्मी आदि का अनुभव होता है, मुझे मीठा लगता है, कड़वा लगता है, ये अनुभव स्वाद आता है मुझे, तो ये अध्यास है, अध्यास कहो मिथ्या अनुभव कहो, लेकिन अनुभव तो उसमें है। सही अनुभव और मिथ्या अनुभव में अनुभव तो सामान्य है, तो उल्टा जो परिणमन है वो तो उल्टा प्रैक्टिकल रूप है, उसका अवलोकन से ज्ञान होता है कि उल्टा कैसे हो सकता है, एक पक्ष से प्रतिपक्ष का ज्ञान होता है। क्या नारकी में वेदना संकेत कैसे होता है? सब देखो, कोई संस्कारी जीव को, संस्कारी जीव को। नारकी में वेदना संकेत होता है, बहुत वेदना है वहाँ, पर इतना लंबा काल वेदना है कि सागरोपम का आयु है, जैसे खुटता ही नहीं, सागर खुटता नहीं, वैसे आयु भी नहीं खुटता है ऐसा लगता है। तो उनको लगता है कि क्या यही जीव का स्वरूप होगा, इसका कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं क्या, दुख मिटता ही नहीं होगा क्या, दुख ही जीव का स्वरूप होगा क्या। अरे ये तो मुझे नहीं चाहिए, हर हालत में किसी कीमत में मुझे दुख नहीं होना। तो उस पर से प्रतिपक्ष रूप सुख को पकड़ता है और वो ज्ञान में से पकड़ता है। कहाँ से पकड़ता है? ज्ञान में से पकड़ता है। तो यहाँ जो उल्टा अनुभव है उसमें अनुभव करने वाला ज्ञान है। तो सूक्ष्मता क्या है द्रव्यानुयोग की और अध्यात्म की, यहाँ के अनुभव और उल्टापना को अलग अलग करो, सुलता हो जाएगा क्या? अनुभव तो अनुभव है पर उल्टापना भी है। अब उल्टापना क्या, तो अंतर अवलोकन करो, परिणमन में उल्टापना क्या है, विपर्यास क्या है और अनुभव क्या है। बस उतनी सूक्ष्मता से भीतर में गया और अकेला अनुभव को भिन्न किया तो भिन्न कहते ही वो उल्टा हो गया, विपर्यास टूट गया। उसको उल्टापने से भिन्न करते ही तो उल्टापना खत्म। दो बात है वहां, एक बात नहीं है, अनुभव भी है और विपर्यास भी है। अनुभव का ही विपर्यास है, क्या है? अनुभव का ही विपर्यास है। तो अनुभव का विपर्यास को छोड़ना है कि साइंस में रिसर्च कैसे होता है? रिसर्च मैंने क्या कि चीज अंदर गुप्त पड़ी है जो सीधी दिखाई देती नहीं है, लेकिन जो रिसर्च माइंडेड है वो पकड़ता है उसमें से, तो उसको ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करे तो नई बात समझ में आ जाएगी। तो चीज तो साथ में पड़ी है, विपर्यास के साथ में पड़ी है, उसको छोड़ करके और विपरीत करता है तो नया चीज मिलता है इसमें से। पर पदार्थ में भी ज्ञान उतना काम करता है, हाँ, जैसे मिट्टी में तेल था, ये मिट्टी का तेल दिया जलाता है कि नहीं जलाता है? मिट्टी में तेल था तो मिट्टी में तेल हो सकता है क्या? तो कहीं दुस्तर शास्त्री ने वैज्ञानिकों ने कहा देखिए इतनी चिकनाई क्यों है, चिकनाई तो तेल में होती है, उसमें उतनी चिकनाई क्यों है? अवश्य उसमें तेल मिलना चाहिए। तो जहां जहां चिकनाई देखते हैं वहां से तेल निकालने का बहुत से रिसर्च हुआ है। तो एक उसको कोई भी सिम्टम मिलता है, कुछ पांव रखने का फुटिंग स्टेप मिलता है, स्पेस मिलता है, तो उधर में चला जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि उपयोग है उसमें ग्नग 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 जानन 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 जानन, उसमें वेदन 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 अनुभव अनुभव है उसमें, पर उसमें मैं पड़ा भी है, उसमें अस्तित्व भी है। बस ज्ञान सुख और अस्तित्व तीनों को पकड़ा तो हो गया सुलटा। लेकिन है सूक्ष्म, उतनी सूक्ष्मता से भीतर में अंदर में प्रवेश करना चाहिए। ये भावों की दुनिया है, अपने भावों की जो दुनिया है, विविध विविध प्रकार के अनंत अनंत भाव उठते हैं, उसको पी करके बैठा है द्रव, गंभीर बहुत गंभीर है, उसकी सूक्ष्मता में जाता है तो वस्तु निकल जाती है बाहर, जैसी है वैसी समझ में आ जाती है। तो उसका जो प्रैक्टिकल है वो है कि उल्टा प्रयोग से सुलटा प्रयोग समझ में आता है कि प्रयोग कैसे करना, प्रयोग कैसे होता है, और उल्टा में उल्टापना क्या है वो समझ में आने से उल्टा और सुलटा दोनों समझ में आ जाएगा। क्योंकि उल्टा कहाँ से कहा, उल्टा कहाँ से कहा, सुलटा समझ में आया तो उल्टा समझ में आता है, वरना उल्टा समझ में नहीं आता है। तो उतना जितना अवलोकन बढ़ेगा उतनी सूक्ष्मता बढ़ेगी। अवलोकन लगातार जब चलेगा स्वरूप प्राप्ति की तीव्र भावना होगी, तब स्वरूप प्राप्ति की तीव्र भावना तब होगी कि पूर्ण जिसको होना है उसको होना है, जिसको पूर्णता का लक्ष्य नहीं उसको इसके अनुपात में आत्मस्वरूप प्राप्ति की भावना होगी नहीं, जिसकी भावना नहीं उसका अवलोकन भी नहीं, अवलोकन नहीं तो सूक्ष्मता नहीं, सूक्ष्मता नहीं तो भेद ज्ञान भी नहीं होगा। बिना भेद ज्ञान किसी को अनुभव हुआ होता ये वस्तु स्थिति में है ही नहीं। हाँ, वो तीन गति की अपेक्षा से, क्योंकि देवलोक में उगाड़ तो ज्यादा है अवधि ज्ञान पर्यंत का, तो नारके में भी अवधि को अवधि उगाड़ तो बहुत है, लेकिन वहाँ राग द्वेष का प्रवाह तीव्र है, और ये राग द्वेष का प्रवाह जीव को तानता है, खींचता है, तानता है, तो उसको मध्यस्थ रहने देता नहीं है। वो मध्यस्थ का बात आया कि नहीं आया, सरलता मध्यस्थता जितेंद्रियपणु विशाल बुद्धि जिसको होता है वो तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र बोला जाता है। ये मध्यस्थता कहाँ से आएगी कि जो राग में तनाता नहीं है, खिंचाता नहीं है, द्वेष में खिंचाता नहीं है, वही मध्यस्थ रह सकता है। जिसका उपयोग खींच गया उसमें वो तो मध्यस्थ रह सकता नहीं है, वो दोष को दोष लिखेगा नहीं, देखेगा नहीं, अपना दोष को अपक्षपात रूप से कौन देख सकता है, जो मध्यस्थ है वही वही सच्चा न्याय करेगा। अनुभव में ज्ञान वेदन है, ज्ञान मात्र जानने का काम करता है, उस वक्त ज्ञान मात्र में ज्ञान वेदन भी है, वेदन तिरोभूत है इसलिए नजर नहीं आता, ज्ञान विशेष आविर्भूत होने से ज्ञान सामान्य तिरोभूत है इसलिए ज्ञान वेदन नजर में नहीं आता। अगर ज्ञेयाकार ज्ञान को गौण करने में आए तो, यानी ज्ञान विशेष को गौण करने में आए तो ज्ञान सामान्य का स्वयं सहज आविर्भूत होगा, आविर्भाव होगा, और वेदन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आएगा, वेदन का अनुभव होगा। इसलिए ज्ञान मात्र में सामान्य ज्ञान को लिया है, ज्ञान मात्र में विशेष ज्ञान को नहीं लिया है, ऐसा लेना। और ऐसा जो द्रव्यानुयोग और अध्यात्म का परम गंभीर और सूक्ष्म विषय है, यही निर्ग्रंथ प्रवचन का रहस्य है, यह निर्ग्रंथ प्रवचन का रहस्य है। जिस महात्मा को अंतर बाह्य कोई ग्रंथि नहीं रही, बाहर में भी कोई ग्रंथि नहीं, किसी से पकड़ नहीं, अप्रतिबंध विहारी होते हैं, और अंदर में भी राग द्वेष किसी के साथ भी पकड़ नहीं है, ग्रंथि नहीं है, ऐसे निर्ग्रंथ महात्माओं के प्रवचन का रहस्य क्या है, ये द्रव्यानुयोग है, अध्यात्म तत्व है। और यही द्रव्यानुयोग के अवलंबन से शुक्ल ध्यान होता है, धर्म ध्यान होता है वो कहने की जरूरत नहीं, सम्यक दर्शन होता है वो कहने की जरूरत नहीं, शुक्ल ध्यान होता है जो केवल ज्ञान की उपस्थिति में होता है। तेरहवें गुण स्थान में कौन सा ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, वहाँ तेरहवें गुण स्थान में भी शुक्ल ध्यान है, तो शुक्ल ध्यान का कारण कौन, द्रव्यानुयोग है। दो पदार्थ की भिन्नता में स्वयं के स्वरूप की अभिन्नता है, क्या पर पदार्थ की भिन्नता के अनुभव कब होता है कि स्वयं की अभिन्नता का अनुभव होता है, तब, उसके पहले भिन्न पड़ता नहीं। राग वेदन से कौन भिन्न पड़ सकता है कि जो ज्ञान वेदन में आता है वो, ज्ञान वेदन हुए बिना राग वेदन से भिन्नता कभी किसी को होती नहीं है। तो ज्ञान ज्ञान को वेदता है, ऐसा जो ज्ञान में ज्ञान का अभिन्न पड़ा है, यही धर्म ध्यान से लेकर के शुक्ल ध्यान का कारण है। ये तो डिग्री का ही फर्क है। इस वेदन में प्रथम धर्म ध्यान होता है और वही डिग्री बहुत बढ़ जाने से उसी को ही शुक्ल ध्यान कहने में आता है। शुक्ल मैंने उज्जवल, बिंदाग बिंदाग दाग नहीं हो जिसमें, उसको उज्जवल कहते हैं, शुक्ल कहते हैं। बहुत शुद्धि बढ़ गई ध्यान करते करते करते, बहुत शुद्धि बढ़ गई तो कहते हैं कि इस ध्यान को हम शुक्ल ध्यान कहेंगे। एक शुक्ल ध्यान का अनन्य कारण मैंने एकमात्र कारण है, अन्य कारण तो कोई हो ही नहीं सकता, इसको अनन्य कहते हैं। अन्य कारण कहीं नहीं है। और शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान समुत्पन्न होता है। नीचे नौवा दसवां बारहवा तेरहवा नौवे गुण स्थान से चालू होता है, नौ दस फिर बारह में जाता है, तेरह में अंतिम शुक्ल ध्यान होता है। ऐसे चार गुण स्थान में शुक्ल ध्यान है और वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। नहीं देना चाहिए वहाँ तो। अपने मतलब की बात तो उतनी है कि द्रव्यानुयोग क्या, उसकी गंभीरता और सूक्ष्मता क्या, और इसका हमारे में परिणमन क्या, फिर डिग्री की बात तो जानने का विषय है। इससे ज्यादा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। महाभाग्य से इस द्रव्यानुयोग की प्राप्ति होती है। द्रव्यानुयोग की प्राप्ति बोला है क्या? महाभाग्य से ऐसा कोई भाग्य होता है कि जिसमें निवेड़ा संसार का अनंत दुख का आ जाता है, सादी अनंत अनंत समाधि सुख में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान समेत। ऐसा किसको होता है कि जिसका महाभाग्य होता है, जिसके होनार ऐसे होती है, उसको द्रव्यानुयोग की प्राप्ति होती है। उसको द्रव्यानुयोग में नजर पड़ती है कि द्रव्यानुयोग क्या चीज है, दूसरे को वो बात समझ में नहीं आती। सिद्धांत बोध पढ़ने सुनने से बौद्धिक स्तर पर जो हाँ करता है, फिर भी अपना प्रयोजन को जो नहीं साधता है, ये बौद्धिक स्तर पर कल्पना किए बिना रहने वाला नहीं है, उसको और एक कल्पना होने वाली है। तो जिस कल्पना के वशात दर्शन वो तीव्र होकर के गृहित मिथ्यात्म में चला जाएगा और विपरीतता में जिन मत के बाहर निकल जाएगा,
महाभाग्य नहीं
वो, महाभाग्य नहीं। द्रव्यानुयोग मिले और ज्ञानी पुरुष के साक्षात श्रीमुख से मिले, और जिसको उसका लाभ नहीं मिले वो महाभाग्य नहीं है, अभागी है। उसको भाग्य कहाँ कहना, तो अभागी है, ऐसी बात है। और जिसको लाभ हुआ उसको निर्वाण पद होने वाला है, उसको महाभाग्य है ही, वो कहने की जरूरत नहीं है कि अवश्य भाग्यशाली है, ऐसी बात है। ऐसे द्रव्यानुयोग को ग्रहण करने वाले को महाभाग्य को हो बड़भागी को हो, एक ही बात है। ऐसा
देव सिद्ध मंदिर भगवान।